प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दिनेश कुमार जो सरसैया गांव जिला सिवान बिहार से हैं, शैलेंद्र कुमार श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं और अभिषेक कुमार इनके गांव का नाम है तालिया जिला नवादा बिहार से हैं, तिलैया इनके गांव का नाम है तिलैया। तो दिनेश शैलेंद्र और अभिषेक आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां मैं दो बातें आप सबसे स्पेशली कहना चाहूंगा, वो ये कि आप सब अपने गांव का नाम लिख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और लिखिए क्योंकि उस गांव की मिट्टी में आप हैं, वहां की मिट्टी में आप बड़े हुए हैं। तो कम से कम हमारे गांव को उस तरह से तो कोई नहीं जानता है, कभी इस तरह के उनके उल्लेख नहीं होते हैं, तो इसी के माध्यम से हम थोड़ा सा अपने गांव का उल्लेख करवा लें, उऋण हो जाए थोड़ा सा ही सही। और दूसरा यह है कि जब मैं गांव के नाम का उच्चारण करूंगा या फिर ऐसे जिलों के नाम का उच्चारण जो बहुत कॉमन नहीं है तो मुझे थोड़ा सा माफ करके चलिएगा, क्योंकि देखिए हमारे जो गांव के नाम होते हैं या चाहे अपने देश के हों या विदेशों के हों, स्थान के नाम उतने कॉमन नहीं होते जो हमारी जुबान पर बैठे हुए हों, अंग्रेजी में लिखे हुए होते हैं तो उनका उच्चारण उनको पढ़ पाना भी सही सही बड़ा मुश्किल होता है। तो या तो आप अपना नाम बिल्कुल हिंदी में लिख करके भेज दें तो मैं हिंदी में ही उसका उच्चारण ज्यों का त्यों कर लूंगा, या अन्यथा मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सही के करीब हों, लेकिन एकदम सही होऊंगा इसकी गारंटी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इतना मार्जिन आप सब मुझे दे करके चलिएगा, लेकिन अगर मेरे पास किसी के गांव का नाम आया तो मैं डेफिनेटली उसे प्राथमिकता देना चाहूंगा। मित्रों अब मैं आज के मुख्य विषय के बारे में आपको बता दूं, जिसका वायदा मैंने आप लोगों से कल किया था कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं आया तो उस पर हम बात करेंगे। आज मैं आपसे कार्यान्वयन पर बात करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन पर बात करूंगा, मुझे यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज के अखबार तो आपने पढ़े ही होंगे दोस्तों, आज के जो अखबार हैं वो आशाराम के सजा से जुड़े हुए हैं। जी लगाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, माफ कीजिएगा, उनकी खबरों से जुड़े हुए हैं तो उन खबरों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा मैं, लेकिन दो तीन बातें आप सबसे सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है, देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसको फाइनल होने में 5 साल लगे, 5 साल राइट। हालांकि 5 साल भी बहुत है, कुछ मामले आपने इससे पहले ये भी देखे जिनको 15-15 साल लग गए हैं, 15-15 साल, चलिए उसकी तुलना में इस मामले को 5 साल लगे तो अपेक्षाकृत 1/3 है, काफी कम है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल भी क्यों लगने चाहिए, क्यों लगने चाहिए? एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गवाह देने वाले लोग हैं, क्योंकि नए गवाह तो पैदा नहीं होंगे, वही लोग हैं, वही वकील हैं, कोर्ट है यानी कि जजेस हैं, सब कुछ वही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जुडिशरी का टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय समाज का जो एक बहुत बड़ा संकट है वो न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था, हम भले ही समाजवादी समाज की स्थापना की बात कर रहे हों लेकिन न तो हम आर्थिक रूप से समाजवादी हो पाए हैं और न ही न्यायिक रूप से समाजवादी हो पाए हैं, और धीरे धीरे हम समाजवाद से लगातार दूर ही होते चले जा रहे हैं। अब तो शिक्षा भी समाजवादी नहीं रह गई, अब तो स्वास्थ्य भी समाजवादी नहीं रह गया, आप देख रहे हैं कि कितना भेद होता चला जा रहा है। चलिए दूसरे क्षेत्र में तो व्यावसायिकता काम करती है कि भाई एक अच्छा स्कूल है, एक बेकार स्कूल है, एक अच्छा हॉस्पिटल है, दूसरा बेकार हॉस्पिटल है, वहां तो धन से संबंध इनका है क्योंकि वो व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन न्याय तो ऐसा नहीं है, न्याय को तो हम समाजवादी बना ही सकते हैं। समाजवादी बनाने का केवल दो पॉइंट में देना चाहूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहला तो है कि आप इसको एकदम सस्ता कर दीजिए, चाहे अपील ही क्यों ना करना हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब आप कह सकते हैं कि सरकार ने उसके लिए अलग से व्यवस्था की हुई है, बकायदे है उसके लिए, संविधान में भी है और उसके तहत विधिक आयोग अलग तरह की व्यवस्था भी है, लेकिन मित्रों वो काम नहीं कर रही है। पहली बात कि कैसे हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को सस्ती से सस्ती बनाएं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वह कैसे शीघ्र बनाएं। शीघ्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर सही में न्याय दिया जाना है तो शीघ्रता अनिवार्य है। आप देखिए कि अभी जो कानून में बदलाव किया गया है लड़कियों बच्चियों के साथ दुष्कर्म को लेकर के, उसमें मेंशन किया गया है ना कि इतने दिन में जांच पूरी हो जानी चाहिए, इतने दिन में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए और इतने दिन में अपील वपील का मामला भी फिनिश्ड हो जाना चाहिए। जब हम वहां कर सकते हैं, मतलब ये विचार करने की बात है, जब हम वहां कर सकते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। कानून ही तो बनाना है और इसके लिए कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इसके लिए कोई धन की जरूरत नहीं है। इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा। जो दूसरी बात है उसके लिए मैं आज आपको एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का। उसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे यहां वैज्ञानिक चेतना हम पैदा क्यों नहीं कर पाए हैं, जबकि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने वैज्ञानिक चेतना की बात शुरुआत से ही करनी शुरू कर दी थी और बहुत ही प्रोमिनेंटली उन्होंने शुरू की थी। आप सोच करके देखिए कि अगर प्रधानमंत्री भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते हुए उसे नए भारत का मंदिर कह रहे हैं, टेम्पल कह रहे हैं, टेम्पल यानी कि धार्मिक स्थल, तो वैज्ञानिक चेतना की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। फिर यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटीज में भी डाल दिया गया है। तो हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जरा भी अगर हमारे अंदर वैज्ञानिक चेतना होती तो मान करके चले कि आशाराम या राम रहीम जैसे तथाकथित बाबा हमारे समाज में पैदा नहीं होते, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इस तरह के बाबा हमारे समाज में हैं। हमारा देश साधु संतों का देश रहा, एक से एक महान साधु संत पहले भी हुए हैं और आज भी हुए हैं, आज भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग, थोड़े से लोग, पूरे के पूरे उस कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं और आस्थाओं पर कितनी चोट पहुंचती है। मुझे लगता है कि जिस दिन वैज्ञानिक चेतना पैदा हो जाएगी उस दिन सही मायने में हम हमारे अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता आएगी, सही और गलत को समझने की ताकत आएगी और तब हम सही के चरणों में होंगे और गलतों को रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो इस समस्या का निदान, ठीक है, कानून अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना में भी है। इस पर भी आप सबको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। मित्रों, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स मैं आज न्यूज़पेपर्स की आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं न्यूज एनालिसिस के तहत ही उसको भी लेकर चल रहा हूं। एक क्लिपिंग है बिजनेस स्टैंडर्ड की जो विसिल ब्लोअर को लेकर है, विसिल ब्लोअर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विसिल ब्लोअर का सीधा सा मतलब है कि जो किसी भी संस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसकी सूचना सरकार को देता है, संस्थान के हेड को देता है, जानकारी देता है और यह सूचना पूरी तरह से गुप्त होती है और गुप्त रखी जाती है। इस तरह की सूचना देने वाले को कहा जाता है विसिल ब्लोअर। अभी तक हम विसिल ब्लोअर की चर्चा ज्यादातर अखबारों में जो पढ़ते थे करते थे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करते थे कि सरकार में इस तरह के लोग हैं, इस तरह, मतलब सरकारी जो गड़बड़ियां होती हैं उसकी जानकारियां दी जाती है। जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है उसकी खूबसूरती यह है कि इसमें उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उदाहरण दिए हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से ये लिखा गया है। कनिका दत्ता जी का लिखा हुआ ये लेख है। जैसे आईसीआईसी का, आप आईसीआईसीआई बैंक का अभी आप संकट देख रहे हैं जिसको लेकर के पूछताछ हो रही है, ये विसिल ब्लोअर की देन है। इससे पहले कुछ और मामले आए हैं, इन्फोसिस में जब इस तरह की गड़बड़ियों की जानकारी दी गई तो उससे कंपनी को बहुत सहारा मिला। रेनबैक्सी को जब दूसरे देश की कंपनी ने खरीदा था तब भी उसमें जानकारी दी गई थी किसी विसिल ब्लोअर ने और इन सबको बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर भी दिया गया जो विसिल ब्लोअर थे। 1990 में हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट का जो स्कैंडल किया था तो वो स्कैंडल हो रहा है, इस स्कैंडल की जानकारी भी विसिल ब्लोअर के जरिए मिली थी। खैर चलिए, वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मामला था, दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों का मामला था, लेकिन अभी जो मैंने तीन नाम बताए ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो इस लिहाज से आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा। और मित्रों, फिर आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पंचायती राज का, जो मणिशंकर अय्यर जी का लिखा हुआ है, जो कांग्रेस सरकार में हमारे इसी विभाग मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे भी ध्यान से पढ़ें। ये बात अलग है कि अब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंग्लिश में है और मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसे मैं आपको हिंदी में भी उपलब्ध कराऊं। तो मित्रों, ये दो आर्टिकल्स के बारे में थे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो कार्यान्वयन पर है, इम्प्लीमेंटेशन पर है। और मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि समस्या नीतियों की नहीं है, समस्या धन का भी नहीं है, समस्या कार्यान्वयन का है। सामान्य तौर पर आप सब कार्यान्वयन के बारे में जानते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां भी समस्या कार्यान्वयन की है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते कैसे हैं। कार्यान्वयन का मतलब क्या है कि जो नीति बना दी गई, जो एक फैसला ले लिया गया, अब उस फैसले को लागू कैसे किया जा रहा है, उसी पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया, जो विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था, बहुत ही क्रांतिकारी कदम था और उसको लेने के लिए बहुत जबरदस्त साहस की जरूरत थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये विमुद्रीकरण का जिस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, वो लगातार फेल होता चला गया। रोजाना उसके रूल्स रेगुलेशंस बदलते चले गए। इसका मतलब है कि वो कार्यान्वयन के स्तर पर सफल नहीं हुआ। फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर बहुत से बैंक के जो अधिकारी थे वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए, जो बैक डोर से धन, काले धन को सफेद बना रहे थे। तो इनफैक्ट सच ये है, जो माना जाता है, कि डिमोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं बुरी तरह से फेल भी हो गया। नीति गलत नहीं थी, अभी बात अलग है कि कैसे, समय क्या था और आगे क्या सोचा गया, वो अलग बात है। लेकिन जो कार्यान्वयन था उसने इतनी अच्छी नीति का कबाड़ा कर दिया। तो मित्रों, ये यानी कि जो आप जो कार्यान्वयन का जो पक्ष है, फर्स्ट पॉइंट, वो बहुत ही व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। दूसरा, जब आप कार्यान्वयन की बात करते हैं तो उसमें दूरदर्शिता शामिल होनी चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए। फोरसाइटनेस का मतलब यह है कि ठीक है, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं लेकिन आगे चल करके उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, क्योंकि समय बदलेगा, लोग उसके तोड़ सोचेंगे, कुछ न कुछ लोग तो करेंगे ही ना, लोग आपकी चीजों को ज्यों का त्यों नहीं मान लेंगे। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा और लोग इसके बारे में और क्या क्या तरीके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स के बारे में कोई कानून बनाते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, दूरदर्शिता, आप देखिए कि लोग इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो भी आपको अभी शामिल करने पड़ेंगे। इसीलिए देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक आप नाम सुनते होंगे, वो है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है कि आप उसे छोटे स्तर पर लागू करके देख रहे हैं और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या संकट आ सकते हैं, ताकि फाइनली लॉन्च करने से पहले आप उन सारे संकटों को, सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, राइट? इसके बाद मित्रों, नो डाउट कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता है, जो भी नाम कह लीजिए, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका चरित्र क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कहा भी जाता है कि मशीन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इम्पॉर्टेंट मशीन के पीछे का व्यक्ति होता है, मैन होता है। अगर गलत हाथ में मशीन दे दी जाए तो वही मशीन को तबाही मचा सकती है, और सही हाथों में दे दिया जाए तो वही मशीन आपको, आपके उत्थान का कारण बन सकती है। तो व्यक्ति के चरित्र का कार्यान्वयन से बहुत ही जबरदस्त संबंध होता है। और इस टॉपिक को आप अपने जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर, मेन्स की बात मैं कर रहा हूं, उस संदर्भ में तैयार करने की कोशिश करें, इस पर थोड़ा सा विचार करें। और इसके बाद जो जो खासकर चरित्र है मित्रों, इसी के तहत आता है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरवाइजिंग। जो बात सुपरवाइजर रखे जाते हैं वो खासकर उनके करेक्टर को या उन पर निगरानी रखने के लिए सुपरवाइजर रखे जाते हैं। तो आपके सुपरवाइजर भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ये बात अलग है कि सुपरवाइजर का भी चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहां भी व्यक्ति है वहां चरित्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद लास्ट है मित्रों, एनालिसिस। हमेशा बीच बीच में उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए कार्यान्वयन की, ताकि समय के हिसाब से उसमें बदलाव कर सके, समय के हिसाब से, ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार एक चीज अगर लागू कर दी तो वह चीज ज्यों की त्यों उसी रूप में बनी रहेगी। मैं समझता हूं कि इस बारे में जो amazon.com है उसका जो केस है, बहुत अच्छा अध्ययन करने लायक केस है, कि कैसे वो लगातार समीक्षा करके अपने को अपडेट करता जाता है, अपने को रेलिवेंट बनाता चला जाता है, कस्टमर की दृष्टि से भी और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी। तो दोस्तों, कार्यान्वयन के बारे में बस इतना ही, अब समय हो चला है। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूं, ईमेल लिखने वाले आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शाश्वत अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से, श्वेता राज चंपारण बिहार से, जादव लक्ष्मीकांत निवृत्ति, सुनीता स्वराज, साहिल कृष्ण, मधु कुमारी, दामिनी पुरैना रायपुर छत्तीसगढ़ से और मुकुल यादव इलाहाबाद से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।